हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है भगवद गीता के इस सत्र में। वी आर वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। आज हम लोग तीसरा अध्याय की चर्चा करने वाले हैं। याद रखिए, ये जो कोर्स हो रहा है ये 18 सेशन में 18 अध्यायों पर चर्चा होगी भगवद गीता के क्या है। अब तक 2 अध्यायों की चर्चा हो चुकी है। पहले अध्याय में हमने देखा कि कैसे प्रारंभ में दुर्योधन ने अपना बहुत दिमाग लगाया कैसे मैं जीत सकता हूँ, और फिर पांडवों के चिन्ह दिखाई दिए कि कैसे वो जीत सकते हैं, और फिर आगे अर्जुन दुखी हुए और अर्जुन ने कारण दिए, भगवान का भक्त वत्सल रूप भी हमने देखा, और फिर दूसरे अध्याय में अर्जुन समर्पण करते हैं, श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाते हैं, शिष्यस्ते हम शादी मान तो हम प्रपन्ना, और फिर उसके बाद भगवान उन्हें ज्ञान देना शुरू करते हैं, अर्जुन की पहचान बताते हैं, अर्जुन की ही नहीं हम सब की पहचान भगवान बताते हैं, और फिर उस पहचान के बाद भगवान वर्णन करते हैं कि कैसे हमें किसी न किसी प्रकार से अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए, कर्तव्यों को छोड़ना नहीं चाहिए, और सबसे अच्छे कर्तव्य को करना है तो हमें बुद्धि योग का इस्तेमाल करना चाहिए। और भगवान ने फिर बहुत सारी चीजें अर्जुन को बताई, और जो एक सफल व्यक्ति है उसके क्या लक्षण हैं उसको भी भगवान ने बताया। तो ये अब हम सुन चुके हैं। तो हुआ ये कि अर्जुन ने सुना कि बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, तो उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सोचा कि मुझे युद्ध नहीं करना है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि का इस्तेमाल करो। तो क्या दुविधा आ गई अर्जुन के मन में और क्या उसने किया, ये अब हम तीसरे अध्याय में देखेंगे कि अर्जुन की जो दुविधा हुई और फिर भगवान ने उसे कैसे दूर किया। तो ये तीसरा अध्याय का शीर्षक है जिसको अब हम लोग सुनेंगे प्रारंभ से। तो यहाँ ये जो तीसरा अध्याय है, हम सब जानते हैं कि ये भगवद गीता यथारूप हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, और इस यथारूप चर्चा पर हम लोग आगे तीसरे अध्याय पर जाएंगे। लेकिन ये जो शिक्षाएं हैं ये श्रील प्रभुपाद अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं, सो ये उनके शिक्षाओं पर आधारित होगा। सो ये हम लोग आज चर्चा अब करेंगे। तो तीसरा अध्याय कर्म योग, अब इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आशा है आप सब बड़े ध्यान से इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। वैसे साधारणता ऐसा होता है कि इसी क्लासेस में सबसे पहले पूछा जाता है आवाज़ स्पष्ट आ रही है या नहीं, ये आदत हो गई है हम लोगों को कि ये बताना कि अब आवाज़, और आशा करते हैं आप सबको आवाज़ सही आ रही होगी, नहीं तो अभी तक बहुत सारे मैसेजेस आ गए होते। सो आप सब सुन पा रहे हैं ना स्पष्ट रूप से? ओके। सो यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ये जो तीसरा अध्याय, हमने बताया कि क्या तीसरे अध्याय की पृष्ठभूमि क्या है, उसकी पृष्ठभूमि हमने बताई। अब ये जो तीसरा अध्याय है इसे कर्म योग कहा जाता है। पहला अध्याय कहा गया सैन्य निरीक्षण, सेना का निरीक्षण किया गया। दूसरा अध्याय कहा गया सांख्य योग, जहां पदार्थ या शरीर और आत्मा में भेद बताया गया। और अब तीसरा अध्याय कर्म योग, बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे काम करने चाहिए, करने चाहिए नहीं करने चाहिए, त्याग कर देना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो इसमें हम लोग जो विभाग देखेंगे, पहले दो श्लोकों में अर्जुन की दुविधा है। क्या दुविधा है अर्जुन को कि सब कुछ छोड़ दूं या कार्य करूं। बुद्धि योग मतलब जैसे भगवान ने पिछले अध्याय में, दूसरे अध्याय में 10 बार बुद्धि योग शब्द का इस्तेमाल किया, तो अर्जुन थोड़ा भ्रमित हो गए कि भगवान तो मुझे बार बार बुद्धि योग मतलब सब कुछ छोड़ने को कह रहे हैं, संन्यास लेने को कह रहे हैं, और फिर एक तरफ कहते हैं कि युद्ध करो। तो अर्जुन ये प्रश्न करेंगे। तो पहले दो श्लोकों में हम ये देखेंगे कि अर्जुन पूछेगा कि छोड़ देना है, गिव अप और एक्ट। तो ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन में। जब भी हमें लगता है कि हमें कुछ करना है तो हमारे जीवन में दुविधा आती है, करें इसको या छोड़ दें। तो ये पहली चीज हम लोग सीखेंगे। दूसरा विभाग है जो तीसरे श्लोक से 9वें श्लोक तक होता है, कि भगवान पूरे भगवद गीता में क्या क्या बता रहे हैं आपको पता चल जाएगा इन 18 सेशंस में। सो दूसरे विभाग में भगवान बता रहे, नहीं कार्य करना चाहिए, भागना नहीं है, कर्तव्य नहीं छोड़ना है, लेकिन कैसे करना है, बिना किसी आशा के, जिसको निष्काम कहा गया। निष्काम, काम यानी आशा इच्छा, निष्काम यानी कोई इच्छा नहीं। सो बिना कोई एक्सपेक्टेशन के हम काम करें, ये बड़ा कठिन होता है क्योंकि हर काम में कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन है। तो हाँ, किस प्रकार की एक्सपेक्टेशन हो, फिर भगवान आगे बताते हैं कि हमें हमारे अंदर जो हमेशा अपने आप के लिए कुछ प्राप्त करने की भावना है, उससे एक ऐसे लाइफ में जाना चाहिए जो बहुत डिसिप्लिन्ड है। मतलब फ्रॉम एंजॉयमेंट टू डिसिप्लिन लाइफ, ये 10 से 16 श्लोक में हम सीखेंगे। और फिर 17वें से 35 तक भगवान कहेंगे एक बहुत अच्छा उदाहरण बनो समाज में। अरे जीवन जी रहे हो, मनुष्य हो, तो कैसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो, दूसरे आपसे क्या सीख रहे हैं, तो ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करो कि इस तरह से एक्शन होगा आपका कि जहां आप बहुत अच्छी तरह से बिना किसी एक्सपेक्टेशन के लोगों के सामने एक उदाहरण बने। हमारा जीवन एक उदाहरण होना चाहिए, नहीं तो क्या लाभ है इस जीवन का। हमने जीवन जी लिया, अच्छा जीवन के अंत में पूछा जाए आपको कैसा रहा आपका जीवन, क्या हुआ, अरे बस हो गया, निकल गया, बहुत अच्छा है। नहीं, हमारा जीवन एक उदाहरण होना चाहिए दूसरों के लिए, दूसरे सीखें हमारे जीवन से। और इसलिए हमें जीवन में इतनी मेहनत करनी चाहिए कि हम एक उदाहरण बन जाएं, लोग दें, सोचें कि हाँ ये व्यक्ति इसके जैसा हमें बनना है। तो वो भगवान बता रहे हैं। और अंतिम विभाग इस अध्याय का है, जहां 36वें श्लोक से लेकर 43वें श्लोक तक जहां चर्चा की जाएगी कि ये आप अच्छा उदाहरण बनना चाहते हो ना, इसमें एक शत्रु है तुम्हारा, एक एनिमी है, उससे सावधान रहो। तो भगवान चेतावनी देते हैं कि उससे सावधान रहो, और केवल सावधान नहीं, उसको कैसे परास्त करो, अपने शत्रु को कैसे मार सकते हो, कौन से शत्रु को, वो आपके घर के पास रहने वाला नहीं कौन से शत्रु, उसकी चर्चा आखिरी में करेंगे। सो भगवान कहते हैं अपने सही शत्रु से आप सावधान रहो और मारो इसको। तो ये जान लीजिए कि जीवन में हमारा सही शत्रु कहाँ है, क्या हमारे पड़ोसी हमारे सही शत्रु हैं, या फिर क्या हमें कोई दुख देने वाला व्यक्ति शत्रु है, या जिसने हमारे हमें धन नहीं पैसा नहीं कमाने दिया वो हमारा शत्रु है, कौन शत्रु है, भगवान उसका वर्णन इस अध्याय के अंत में करेंगे। तो इस तरह इस अध्याय से हम लोग बहुत महत्वपूर्ण इन चीजों को सीखने वाले हैं। पहले विभाग में जैसे हमने बताया दो श्लोकों में अर्जुन के प्रश्न हैं, तो अर्जुन का एक संशय था, डाउट था अर्जुन को। क्या डाउट था अर्जुन को, कि मैं कर्म करूं, मतलब एक्शन होना चाहिए, मतलब ड्यूटी फाइटिंग करना वगैरह एक्शन, या फिर सब कुछ छोड़ दूं, नॉलेज ज्ञान लूं और एकदम बैठ जाऊं बस कुछ नहीं करूं, केवल ज्ञान ले लूं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, जैसे ज्ञान दिया भगवान ने। सो अर्जुन के मन में संशय था, तो अर्जुन ने क्या सोचा कि जो लोग ज्ञान लेते हैं वो एक्शन नहीं करते, दे आर इन नॉलेज दे डोंट डू एक्शन, या फिर दोनों अलग अलग हैं। अर्जुन ये सोच रहा था कि अगर एक्शन करना है तो ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञान लेना है तो एक्शन की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इस कंफ्यूजन में उसने प्रश्न किया भगवान से कि आप मुझे एक चीज बताइए, या तो एक्शन करूं या नॉलेज लेने चला जाऊं, दोनों में से एक चीज बताइए क्या करूं, क्योंकि मुझे दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, एक्शन भी करना और नॉलेज भी लेना। तो यहां हम लोग देखते हैं कि एक जो गंभीर विद्यार्थी होते हैं किसी भी विषय के, उनका एक लक्षण है, क्या लक्षण है, कि मन में जो संशय आते हैं वो जो हमारे शिक्षक हैं उनके सामने वो रखते हैं। ये जरूरी है, ये गंभीर विद्यार्थी का लक्षण है, क्योंकि गंभीर विद्यार्थी का अर्थ क्या है, किस चीज में गंभीर है, जिस पथ पर वो चल रहा है, जिस ज्ञान को वो ले रहा है उसको बड़ी गंभीरता से अच्छी तरह समझे। आप लोग विद्यार्थी हैं, आप में से कई लोग विद्यार्थी हैं, या आप यहां जब आए हैं भगवद गीता समझने, तो आप सब विद्यार्थी हैं, तो आपको कैसे गंभीर होना चाहिए, आपके मन में अगर कोई संशय आ जाता है, कोई डाउट आ जाता है, आपको तुरंत क्लियर करना चाहिए, नहीं तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। संशय आत्मा विनश्यति मतलब जो बहुत डाउट में रहते हैं और अपना डाउट क्लियर नहीं करते, क्लियर किससे करें, सही अथॉरिटी से। जैसे हमने कई बार कहा है, आप पान वाले के पास जाकर नहीं भगवद गीता की चर्चा कर सकते हो कि बताइए कि कृष्ण अर्जुन को ऐसा क्यों कह रहे हैं, पान वाले को क्या पता चलेगा। या कभी कभी लोग नाई के पास जाते हैं शेविंग कराने के लिए और वहां बैठकर चर्चा करते हैं और बड़ी अच्छी चर्चा हो, उसको क्या पता। सो हमें किसके समक्ष अपने संशय को अपने डाउट को रखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें डाउट हो किसके समक्ष रखें, जो योग्य व्यक्ति है, जो हमें बता सकता है, जो हमारे संशय को दूर कर सकता है और कंफ्यूज ना कर दे, ऐसे व्यक्ति के सामने नहीं जाना चाहिए। इसीलिए यहां इस विभाग में हम सीखते हैं कि एक विद्यार्थी को निश्चित संशय होंगे और वो संशय को दूर करे, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो उसके संशयों को दूर कर सकते हैं और उनसे फिर निर्भय होकर संशय पूछे, प्रश्न पूछे। सो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है और ये एक बहुत अच्छा लक्षण है विद्यार्थी का, तो इसको हमें सीखना चाहिए। तो जब अब अर्जुन ने प्रश्न कर लिए, अर्जुन ने बहुत अच्छे प्रश्नों को किया, इतने अब ये कहा कि बताइए मुझे स्पष्ट क्या करूं, तो अब भगवान उसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। सो भगवान क्या दे रहे हैं उत्तर, कैसे उत्तर दे रहे हैं। सो भगवान समझाते हैं कि अर्जुन ने पूछा ज्ञान लू या एक्शन होना चाहिए। सो भगवान कहते एक्शन होना चाहिए, लेकिन बिना एक्सपेक्टेशन के, जिसको हम निष्काम कर्म योग के नाम से जानते हैं। सो एक्शन होना चाहिए, तो कृष्ण उत्तर देना शुरू करते हैं और सबसे पहले ये बताते हैं कि अर्जुन जो तुम्हारी इच्छा है कि तुम अपने कर्तव्य को छोड़ना चाहते हो, एक्शन नहीं करना चाहते हो, तो ये ही गलत है। क्यों गलत है, पहला कारण भगवान देते हैं कि आत्मा हमेशा एक्टिव रहती है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, हो ही नहीं सकता कि वो एक्टिव ना रहे, हमेशा एक्टिव है। तो उस एक्टिव आत्मा को तुम इनएक्टिव नहीं बना सकते। देखिए कई लोग योगा के नाम पर, आध्यात्मिकता के नाम पर धोखा देते हैं समाज में। क्या देते हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आपको इनएक्टिव हो जाना है, आप जो ध्यान कर रहे हो वो ऐसे पे ध्यान करो जहां कुछ नहीं है, और आगे चलकर आपको पूरा इनएक्टिव हो जाना है। तो हमारा प्रश्न है कि अगर हमें इनएक्टिव होना है तो हम इतना एक्शन क्यों करें? ये तो इस तरह है कि व्यक्ति का जन्म हुआ, बच्चे को कहा कि देखो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, पढ़ाई करना होगा, धन कमाना होगा, विवाह करना होगा, एक काम करते हैं अभी मार देते हैं तुम्हें। इनएक्टिव कैसे हो सकते हैं, जो करना है वो तो जरूरी है। तो इसी तरह कई लोग होते हैं जो इस सिद्धांत को नहीं जानते कि आत्मा कभी इनएक्टिव हो ही नहीं सकता, और ऐसे सिद्धांतों को देते। तो लेकिन एक्शन होना चाहिए। इनएक्टिविटी भगवान कहते हैं इज नॉट एन ऑप्शन, आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इनएक्टिव रहें या एक्टिव रहें, वो तो एक्टिव होना ही पड़ेगा। बस ये देखना है कि हमारे जो कार्य हैं, हम कैसे कार्य कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो काम ऐसे होने चाहिए जो शुद्धता की ओर ले जाए, वो काम ऐसे होने चाहिए जो आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाए। ऐसे काम मत कीजिए जिनसे और गंदगी चढ़ जाए हमारे ऊपर और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए है, ये जो जगत है जहां हम रह रहे हैं, इसमें एक बड़ी अच्छी बात है, आपको बताते हैं। बड़ी अच्छी बात क्या है? बड़ी अच्छी बात यह है कि हम लोग करते मूर्खता हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि बहुत बड़ा। एक छोटा सा आपको जोक सुनाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं सुअरों का बिजनेस करूंगा, सुअर पालूंगा और उनको बेचूंगा, बहुत पैसा आएगा। क्यों उसने सोचा? क्योंकि उसने सोचा कि सुअर पालने में खर्चा नहीं है, सुअरों को एक जगह रख दूंगा, वो खाते क्या है, वो तो सब मल खाते हैं, तो वो तो वैसे ही मिल जाता है, खरीदना थोड़ी पड़ता है, तो फिर उनको ऐसे ही वो खाएंगे, मेरा पैसा कमाऊंगा। तो उसने बहुत सारे सुअर पाल लिए। अब वो क्या करता, सुअरों को अब उसको चाहिए था, कुछ मिल नहीं रहा था सुअरों को खिलाने के लिए। तो गांव में था, तो गांव के लोग सुबह सुबह बाहर जाते थे सारा कार्य करने के लिए, शौच करने के लिए। तो उसने सोचा वो सब मैं एक टोकरी में उठाकर ले आता हूं और मैं इनको खिलाऊंगा और फिर इससे मैं बहुत पैसा कमा लूंगा। तो वो गया, उसने सब वो जो गंदगी थी, मल था, सबने जो पास किया हुआ था, वो सब वो टोकरी में रखा, बांस की टोकरी में, और लेकर आ रहा था। जब वापस आ रहा था तो इतने में बारिश आ गई, और बारिश आई तो आप सोचिए कि वो सारा जो गंदगी थी, सारा जो शौच किया हुआ था, वो सब पानी के द्वारा उसके ऊपर गिरने लगा और उसके शरीर से गंदी बदबू आने लग गई। लोगों ने देखा और लोग कह रहे क्या कर रहे, क्या कर रहे, गंदा व्यक्ति, दूर रहो, ये क्या कर रहे हो, फेंको उसको। लेकिन वो फेंक नहीं रहा था, क्यों? क्योंकि वो सोच रहा था ये सब मेरी प्रगति से जलते हैं, ये नहीं चाहते कि मैं कमाऊं, तो इसीलिए कोई चिंता नहीं, इनको बोलने दो, मैं करता रहूंगा। इसी तरह इस जगत में हम लोग काम करते हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमें कोई गाइडेंस नहीं है, हमें पता नहीं है हमें क्या करना है, लेकिन हम क्या करते हैं, ना तो शुद्धता के लिए कार्य करते हैं, ना आत्म साक्षात्कार के लिए। तो सारे कार्य किस लिए हैं? वो इस तरह है कि हम सुअर पालने के लिए तैयार हैं और वो जो मल गंदगी है अपने ऊपर और ले रहे हैं। और जब कोई आकर कहता है, कोई भगवद गीता का ज्ञाता, कोई साधु, कोई अच्छा व्यक्ति आकर कहता है कि देखो ऐसे मत करो, ये जीवन इसके लिए बना है, ये जीवन शुद्धिकरण के लिए बना है, ये जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए बना है, तो हमारे मन में क्या आता है, ये जलते हैं ये लोग मेरी प्रगति से, मुझे प्रगति करनी है। सो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन सच्ची प्रगति क्या है? सच्ची प्रगति ये नहीं है कि तुमने अपने ऊपर मल डाल लिया या आप कुछ काम नहीं करोगे, तो काम तो करना ही है। सो अब वो अर्जुन को बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। भगवान कहते हैं कि काम होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, दोनों है। सो इसीलिए यहां पर हम आपको कुछ कहना चाहते हैं कि एक्शन विदाउट नॉलेज इज डेंजरस, एंड नॉलेज विदाउट एक्शन इज पावरलेस. अगर हम काम कर रहे हैं, एक्शन हो रहा है हमारा, लेकिन ज्ञान के बिना है वो, बहुत अच्छा एक्शन है लेकिन ज्ञान के बिना है, बहुत खतरनाक है. लेकिन ज्ञान है आपको और उसको आप एक्शन में नहीं ला रहे हो, तो उसकी उसका फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है. जैसे उदाहरण देते हैं, एक डॉक्टर है मान लीजिए, उसको ऑपरेशन करना आता नहीं, ज्ञान नहीं है उसको, बन गया किसी तरह डॉक्टर, लेकिन ऑपरेशन करना नहीं आता, नॉलेज नहीं है. अब वो कोई पेशेंट आता है, अरे अरे डॉक्टर साहब जल्दी कुछ कीजिए, इसका कुछ होना, अच्छा इसको ऑपरेशन करेंगे, ठीक है चलो, काटा पीटी शुरू कर दी. अब उसको पता ही नहीं है, ज्ञान है नहीं, तो वो काटा पीटी करके क्या करेगा? मार डालेगा. हो सकता है वो उसके बिना ऑपरेशन के बच जाता, लेकिन ऑपरेशन के बाद तो पक्का मर जाएगा. तो इसीलिए एक्शन विदाउट नॉलेज इज डेंजरस. अब मान लीजिए वही एक डॉक्टर है जिसको सारी नॉलेज है, लेकिन वो कहते हैं मैं किसी को ट्रीट नहीं करूंगा, मैं घर में बैठूंगा, हो गया ना डिग्री हो गई मेरे पास, मैं अभी किसी को दवाई नहीं दूंगा, किसी को ऑपरेशन नहीं करूंगा, तो फिर ऐसे फायदा क्या है उस नॉलेज का कि आप लेकर बैठे हो लेकिन आप उसको एक्शन में नहीं ला रहे हो. इसीलिए वी शुड टर्न अवर नॉलेज इनटू एक्शन. सो जीवन में कैसे कार्य होने चाहिए? जीवन में कार्य ज्ञान के आधार पर होने चाहिए, क्योंकि एक्शन भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, और ज्ञान भी जरूरी है, नॉलेज भी जरूरी है. इन दोनों के द्वारा आत्म साक्षात्कार होता है. केवल ज्ञान लेकर बैठ जाना, सब कुछ छोड़ देना आत्म साक्षात्कार नहीं है. और केवल एक्शन करते रहना, ज्ञान ही नहीं लेना, क्या हो रहा है, भगवद गीता क्या है, भगवान ने क्या कहा, मुझे कुछ लेना देना नहीं, बहुत खतरनाक है. तो इसीलिए हमें लर्न, हमें सीखना है. क्या सीखना है? यू हैव टू टर्न योर नॉलेज इनटू एक्शन. फर्स्ट टेक नॉलेज. जैसे आज आप भगवद गीता का सुन रहे हो, दो अध्याय और सुन चुके हो, आगे पूरे 18 अध्याय सुनोगे, उसको नॉलेज कहते हैं, लेकिन उसको एक्शन में लाना है. सो टर्न नॉलेज इनटू एक्शन, अर्थात जीवन ऐसा जीना चाहिए जो भगवद गीता के सिद्धांतों पर आधारित हो. ये भगवद गीता केवल नाम के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, ज्ञान लेने के लिए नहीं है, इसको आपको एक्शन में टर्न करना होगा. तो कैसा हमारा जीवन हो, कैसे हम जिए? हम जिए भगवद गीता के आधार. तो कोई कह सकता है अरे ये तो केवल साधुओं का काम है, हमारा काम नहीं, हम स्टूडेंट है. बिल्कुल नहीं, स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत कुछ दिया है भगवद गीता में. रेगुलेटेड लाइफ भगवद गीता में दी है, माइंड कंट्रोल भगवद गीता में दिया है, जो स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, ये सब भगवद गीता में दिया हुआ है. तो इसीलिए भगवद गीता का ज्ञान लेकर टर्न नॉलेज इनटू एक्शन. प्लीज डोंट जस्ट कीप इट एज इट इज, ऐसे नहीं रख दीजिए, इस ज्ञान को लीजिए और एक्शन में. तो एक्शन कैसे होगा ज्ञान का? जब हमें ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया, नॉलेज बेस्ड एक्शन ऑलवेज मेक अस प्रोग्रेस. जब हमारा ज्ञान के आधार पर कार्य है, वो सदैव प्रगति की ओर होगा. मूर्ख व्यक्ति का सारे कार्य अधोगति, नीचे ही जाएगा. So, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात यहां हम भगवद गीता के इस विभाग में तीसरे अध्याय के सीखते हैं कि ज्ञान पर आधारित हमारा सारा कार्य होना चाहिए. वैसे भी ज्ञान भौतिक जगत में भी कुछ करेंगे तो उसके लिए भी आवश्यक होता है. और ये जो ज्ञान हम लेंगे तो ये किसके लिए होगा, किस आधार पर होगा ज्ञान, या जो हम कार्य कर रहे हैं दोनों, इसका उद्देश्य हमने कहा हमारे आत्म साक्षात्कार को, शुद्धता को प्राप्त करना. और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो हमें इसमें मदद करता है, हमारे नॉलेज को एक्शन में टर्न करने में, श्रद्धा, फेथ बहुत मदद करता है. भगवान ये चीज बताते हैं कि जैसे मान लीजिए योगा की कोई सीढ़ी हो, एक एक दो तीन आप सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, तो ये कार्य करना और ज्ञान लेना ये सब योगा सीढ़ी के ही एक एक पथ है, एक एक सीढ़ी है. लेकिन इसमें मजबूती हमें आती है जब हम श्रद्धा का पालन करते हैं. श्रद्धा मतलब क्या है? श्रद्धा मतलब ब्लाइंड फेथ नहीं है, ये दो अलग अलग चीजें हैं. ब्लाइंड फेथ अंधविश्वास ऐसा होता है वैसा होता है, ये हो गया तो वो होगा, ये होगा तो वो, बिल्कुल नहीं। श्रद्धा, श्रद्धा क्या है? श्रद्धा मतलब हृदय का शुद्धिकरण। जब हम हृदय को शुद्ध करते हैं या उस भगवान की बातों को स्वीकार करते हैं, ये जानते हुए कि जिन्होंने ये जगत बनाया है, जिन्होंने हमें बनाया है, वो हमसे अच्छा जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, इस बात पर विश्वास करते हुए हम अपने कार्य करते हैं। और ये बात विश्वास होनी चाहिए। आजकल लोग प्रश्न करते हैं, भगवान कहाँ है, भगवान की भक्ति करने का क्या लाभ है, बहुत सारे प्रश्न करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि आपको बनाने वाले भगवान हैं, ये जगत बनाने वाले भगवान हैं, ये जगत को चलाने वाले भगवान हैं, और इस जगत का नाश भी जब होगा तो वो भी भगवान करते हैं। जब सब कुछ भगवान कर रहे हैं तो क्या उनके द्वारा दिया गया ज्ञान हमारे लिए अच्छा नहीं होगा? हमें ये श्रद्धा होनी चाहिए। और आजकल आधुनिक समाज के कारण हम इस श्रद्धा को भूल गए हैं। हम भगवान को हमने अपने जीवन से निकाल दिया और हम इसको एडवांसमेंट कहते हैं। ये दुर्भाग्य है। भारत जैसी पावन भूमि में भी आज ये हो रहा है कि जीवन से भगवान को निकाल दीजिए, आप एडवांस हो गए। आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए, मैं भगवान को नहीं मानता, आप मॉडर्न हो गए। धोखा है, अपने आप को धोखा दे रहा है व्यक्ति। जब जरूरत होती है तो सभी लोग भगवान की ओर मुड़ते हैं। हमने आपको बताया था, नासा जो अमेरिका की इतनी बड़ी एजेंसी है, तो नासा में भी जब उस समय एक तीन साइंटिस्ट फंस गए थे, तो उन्होंने सबसे कहा, आप सब पूरे विश्व को कहा, भगवान से प्रार्थना कीजिए उनकी रक्षा के लिए, हमारे कंप्यूटर सिस्टम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हर कोई भगवान की ओर मुड़ना चाहता है, तो ये अंधविश्वास नहीं है। भगवान को जीवन से मत निकालिए, क्योंकि आप निकाल ही नहीं सकते हैं। ये तो आप आंखें बंद कर लेना, जैसे लोग कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति इत्यादि कर रहे हैं लोग अंधविश्वासी हैं। हमारा कहना है कि जो भगवान को नहीं मानते वो अंधे विश्वासी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात को स्वीकार करने से मना कर दिया कि आज भी हमारा जीवन केवल भगवान से चलता है। हमें जो सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, हमें हवा मिल रही है, हमें पानी मिल रहा है, भगवान ने कितनी व्यवस्था करके रखी है हमारे लिए। समुद्र के समुद्र बनाकर रखे हैं कि आने वाली जनरेशन के लिए कभी पानी खत्म नहीं होगा। सो भगवान ने सारी व्यवस्था की हुई है, और वो बिल भी नहीं भेजते हैं आपको। आपके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले तो हर महीने बिल भेज देते हैं, पेमेंट नहीं करो तो काट देते हैं। भगवान ने भेजा आज तक आपको बिल, आपकी सांसों का, पानी का, भूमि का, कोई बिल नहीं भेज रहे। सरकार आती है, जमीन का टैक्स ले लेती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि है किसकी सब भूमि? सारी भूमि गोपाल की है, लेकिन कभी टैक्स नहीं दिया उसको। तो ऐसा मत कीजिए, अपने जीवन से भगवान को दूर मत कीजिए, जीवन सुखी नहीं हो पाएगा। जितने भी लोगों ने ये किया उनके जीवन में सुख नहीं है। आधुनिक होने का अर्थ क्या है? मॉडर्न होने का अर्थ क्या है? मॉडर्न होने का अर्थ है कि हम सारी चीजों को लेकर भगवान को जानने का प्रयास करें। मॉडर्न होने का अर्थ ये है कि हम नए नए तरीकों के द्वारा, मॉडर्नाइजेशन मतलब नई नई चीजें ईजाद होती हैं, तो नई नई चीजों को बनाने के द्वारा स्थापित करें कि ये सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। और ऐसी श्रद्धा हमें चाहिए कि आज भी हमारा जीवन भगवान ही चला रहे हैं। भगवद गीता में एक बहुत अच्छी बात भगवान कहते हैं, वो कहते हैं, आगे के अध्यायों में आएगा, कि भगवान कहते हैं कि आप भोजन कर रहे हो और आपको भोजन पचाने के लिए एक अग्नि की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं वो मैं हूं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम, सारे प्राणियों में ये जो अग्नि है, जठर अग्नि, ये मैं हूं। तो भगवान कह रहे हैं मेरे बिना तो तुम भोजन भी नहीं पचा सकते, किस चीज का अहंकार है तुम्हें? इसीलिए जीवन से भगवान को ना निकालें, श्रद्धा रखें, विश्वास बढ़ाएं कि हम जिस पथ पर चल रहे हैं वो पथ निश्चित हमें सफलता की ओर लेकर जाएगा। ये विश्वास हमें होना चाहिए। तो ये श्रद्धा आवश्यक है ताकि हमें सच्ची सफलता मिले। इसलिए दो मार्ग सच्ची सफलता के हैं, एक केवल ज्ञान ओनली नॉलेज, दूसरा एक्शन विद नॉलेज जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। सो ओनली नॉलेज जो होता है ये कल्पना माना जाता है, लेकिन अगर एक्शन विद नॉलेज है तो ये कृष्ण भावनामृत माना जाता है, अर्थात भगवान की चेतना में रहना। तो एक जो पथ है केवल ज्ञान का वो सीधा मार्ग नहीं है, अप्रत्यक्ष मार्ग है, लेकिन कृष्ण भावनामृत भगवान की सेवा सीधा मार्ग है। क्यों? इसमें कृष्ण के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं और फिर सफलता की गारंटी भगवान ने दी हुई है। भगवद गीता के कई श्लोकों में भगवान ने गारंटी दी है कि अगर आप ऐसा कार्य ज्ञान के आधार पर कार्य करोगे, एक्शन विद नॉलेज, यू आर डेफिनेटली गेटिंग सक्सेस। भगवान ने ये कई श्लोकों में गारंटी दी कि आप ये कार्य कीजिए, निश्चित होगा। तो इसीलिए हमें उस पथ पर चलना चाहिए जहां हमें केवल भगवान की सेवा या भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर अपना जीवन चलाएं। किस हर चीज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, गिव अप एवरीथिंग, कोई आवश्यकता नहीं है टू गिव अप एवरीथिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग संन्यास ले लेते हैं कि सब अभी तैयार नहीं है लेकिन संन्यास ले लिया। तो क्या होता है संन्यास लेने से, फिर आप समाज में दुर्व्यवस्था लाते हो और कोई सफलता नहीं मिलती है आपको आपके कर्मों के फलों से। तो संन्यास यानी चीजों को त्यागना ये शुद्धिकरण का मार्ग नहीं है, ये तो शुद्धिकरण का फल है कि व्यक्ति के हृदय में वैराग्य आ जाता है या व्यक्ति त्यागता है, लेकिन ऐसे ही त्याग देना ये तो आलस का लक्षण हो सकता है। तो इसलिए हमें चीजों को बहुत जल्दी त्यागने का प्रयास नहीं करना। कोई बड़े वैरागी बनना है, जहां है जिस जगह पर है उसी मार्ग पर आगे चलना है और उसको कहा जाता है ज्ञान का पथ। ज्ञान का पथ सच्चे ज्ञान का, एक ज्ञान दिया जाता है जैसे जिसमें केवल भगवान को निकाल दिया जाता है जैसे सांख्य योग इत्यादि, तो वो कोई प्रभावी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हो ही नहीं सकता जब तक हम एक्शन ना हो। तो इसलिए सच्चे ज्ञान का पथ है जहां एक्शन हो। लेकिन भगवान एक चेतावनी दे देते हैं इसी अध्याय के छठे श्लोक में। भगवान कहते हैं कि आप एक्शन कर रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन मिथ्याचारी मत बनो, धोखेबाज मत बनो, दिखावा मत करो। भगवान कहते हैं तो दिखावा मतलब किस चीज का दिखावा? कि हम बहुत बड़े अध्यात्मवादी हैं, हमारा मन अभी तक शुद्ध नहीं हुआ और हम ध्यान का दिखावा कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा ध्यानी योगी हूं। तो भगवान कहते हैं ध्यान ये दिखावा मत करो कि बाहर से तो आप दिखावा कर रहे हो बहुत बड़ा योगी हूं और अंदर से सारे मन में आपके भोग करने की इच्छाएं भरी पड़ी है। तो इसलिए भगवान एक चेतावनी यहां दे देते हैं। तो फिर अगर हम दिखावा ना करें तो क्या करें? अपने सही इंटरेस्ट को समझिए, सेल्फ इंटरेस्ट को समझिए कि आपका सच्चा सेल्फ इंटरेस्ट किस में है, जिसे स्वार्थ गति कहा जाता है। स्वार्थ गति मतलब कि भगवान श्री विष्णु को प्राप्त करना ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं, नते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः, कि लोगों को पता ही नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जीवन का उद्देश्य ऐसा जीवन हो जो शास्त्र पर आधारित हो और भगवान की प्राप्ति के लिए हो। सो इसीलिए भगवान कहते हैं चेतावनी देने के बाद कि ऐसे कार्य नहीं करना। तो फिर कैसे कार्य करना है? कार्य ऐसे करना है जो यज्ञ के रूप में हो। हर हमारा कार्य यज्ञ होना चाहिए। कैसे बन सकता है हर कार्य यज्ञ? जब हम कृष्ण भावनामृत में काम करते हैं। सो जैसे ही कहा गया है यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोको यम कर्म बंधनः, अगर यज्ञ रूप में सारे कार्य नहीं किए गए तो बंधन आता है, लेकिन अगर वही हम सारे कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं तो फिर हमें बहुत सी चीजों से मुक्ति मिलती है। इस जगत में हम फंसे हुए हैं, द्वेष लेकर फंसे हुए हैं, क्रोध लेकर फंसे हुए हैं, लोभ लेकर फंसे हुए हैं, और इन्हीं चीजों में हमारा जीवन जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि एक मार्ग है, बस अपने सारे कार्य यज्ञ की तरह करो, मुक्ति का मार्ग निश्चित आपके पास है। भगवान इस चीज को बताते हैं कि हमें कृष्ण भावनामृत में कार्य करने चाहिए या भक्ति करनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, सारे जितने कर्म फल हैं उससे हमें मुक्ति मिलती है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं भाग्य बदला जा सकता है कि नहीं, हम तो भाग्य लिखा कर लाए हैं, हमारे भाग्य में तो दुख ही दुख है, क्या उसको बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है, क्योंकि हमारा भाग्य है हमारे पूर्व कर्मों के फलों के आधार पर, और जब हम उनको ही समाप्त कर देते हैं तो फिर निश्चित हमारा भाग्य बदल जाता है। जब हम कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं तो हम मुक्त रहते हैं प्रारंभ से ही इन चीजों से, और साथ ही साथ धीरे धीरे भगवान से प्रेम करना सीखते हैं। देखिए, अन्य मार्गों में और भगवान के लिए सेवा करने के एक्शन विद नॉलेज में क्या अंतर है? अंतर ये है कि हम धीरे धीरे भगवान से प्रेम करना सीखते हैं, और उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि हम भगवान से प्रेम कर सकें, कृष्ण से प्रेम कर सकें। केवल कुछ बहुत बड़ा बड़ा काम करके मर जाएं और फिर जीवन लें और फिर मरें और फिर जीवन लें और मरें, ये नहीं। कृष्ण से प्रेम करना हमें सीख लेना चाहिए। और फिर आगे भगवान अब तीसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं कि प्रेम करना सीखना है, लेकिन उसके लिए हमें भोग करने की भावना, एंजॉयमेंट टेंडेंसी को थोड़ा सा कम करना होगा कि छोड़ना होगा, और एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी होगी। कर्मकांड से कर्मयोग। कर्मकांड क्या है? जहां हम एंजॉय करने के लिए कार्य करते हैं। कर्मयोग डिसिप्लिन लाइफ है। सो इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू बी डिसिप्लिन, एंड इन फॉलोइंग डिसिप्लिन समटाइम यू हैव टू गिव अप एंजॉयमेंट। कभी कभी डिसिप्लिन लाइफ पालन करने के लिए आपको एंजॉयमेंट छोड़ना पड़ता है। तो वैसे जो कर्मकांड मतलब थोड़ा ये करें उससे ये मिले, ये करें ये मिले, वो करने का उद्देश्य ये है कि आप इस जगत में अच्छे से रह सको और धीरे धीरे जीवन के उद्देश्य सफलता की ओर बढ़ सको। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैंने ये व्यवस्था की हुई है कि देवता हैं और आप लोग हैं, करते रहिए पूजा उनकी ताकि इस जगत में आप खुश रहें, लेकिन अगर आपको इस जगत के बाहर जाना है तो फिर मेरे पास आना होगा। ऐसे भगवान कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो केवल सरल चीजों के द्वारा मुक्त हो जाते हैं पापों से। देखिए, आप सब भगवद गीता सुन रहे हैं, जीवन बदलिए, और एक ये महत्वपूर्ण चीज जो अब आप देख रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है अपने जीवन को बदलने के लिए, और वो है कि भगवान को अर्पण किया हुआ भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। भगवान बहुत कठोरता से एक श्लोक में कह रहे हैं इस अध्याय के, तीसरे अध्याय के, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषे भुंगते ते त्वघम पापा ये पचंती आत्मकारणा। अगर केवल आप अपने लिए खा रहे हो, अपने भोग के लिए खा रहे हो, तो भगवान कहते केवल पाप खा रहे हो, लेकिन वही यज्ञ में अर्पण किया, अर्थात मुझे अर्पण कर दिया, भगवान को अर्पण कर दिया है, और फिर खा रहे हो, तो वो आपको सच्ची शांति और प्रसन्नता की ओर ले जा सकता है। कैसे ले जा सकता है? इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण आप देख सकते हैं कि जब हम प्रसाद खाते हैं तो ये क्या है, एक एंटीसेप्टिक वैक्सीन की तरह। आजकल वैक्सीन लग रही है, सो वैक्सीन लगा लो तो फिर कोरोना नहीं होगा। तो प्रसादम ऐसा ही है, जब हम कृष्ण का प्रसाद लेते हैं तो फिर जितने भी पूर्व जन्म के हमारे पाप हैं उससे तो हमें मुक्ति मिल ही जाती है, और आगे आने वाले अगर कुछ गलत काम होने वाले हैं तो उनसे भी हमें बचा लिया जाता है। इसलिए एक सरल चीज आप जीवन में अपनाइए, और वो क्या है? कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करना। बहुत सरल है, आप जो भी खा रहे हैं, ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि जो भी खा रहे हैं, मतलब आप जो चीज अर्पण की जा सकती है भगवान को, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वेजिटेरियन चीजें, उसको भगवान को अर्पण करके खाइए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको बहुत मदद करेगा। छोटी सी चीज अपने जीवन में जरा सा बदलाव लाइए। आप खाने जा रहे हैं, बड़ी इच्छा हो रही है, बस उसको लेकर थोड़ा सा पहले भगवान के सामने रख दें और भगवान से कहें कि कृपया इसको आप शुद्ध कर दीजिए, और फिर उसको खा लें, क्या तकलीफ है। भगवान को अर्पण करके खाना ये हमारे जीवन में बहुत मदद कर सकता है। क्यों मदद कर सकता है? क्योंकि हमारा जीवन सारा कृष्ण भगवान पर आश्रित है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो भी आप देखते हो, कैसे जीवित जीवित रहता है व्यक्ति, अन्न खाने से। अन्नात भवन्ति भूतानि परजन्यात अन्न संभवः। अन्न कहाँ से होता है? जब तक बारिश नहीं होगी तो अन्न कहाँ से आएगा? इसलिए अन्न उससे होता है। और फिर अन्न कैसे आता है, इसका बहुत बहुत सुंदर एक साइकिल आपको दिखाते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि ऑल एम्बॉडीड लिविंग बींग्स, जितने भी जीव हैं वो किस पर हैं? अन्न पर आश्रित हैं। अन्न कहाँ से आता है? अन्न वर्षा से आता है। वर्षा किस पर आश्रित है? यज्ञ पर आश्रित है। यज्ञ कैसे कर सकते हैं? यज्ञ करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारे लिए शास्त्रों में बताया गया है, हमारे लिए कर्तव्य है। ये कहाँ लिखा है कर्तव्य? शास्त्रों में। शास्त्र कहाँ से आते हैं? भगवान से। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो हम लोग किस पर आश्रित हैं? अंततः पूर्ण रूप से भगवान पर। भगवान ना हो तो वेद नहीं आएंगे, वेद नहीं होंगे तो कर्तव्य लोग नहीं करेंगे, कर्तव्य नहीं करेंगे तो यज्ञ नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, हम सब मर जाएंगे। तो आश्रित हम सब भगवान पर ही हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं यज्ञार्थात कर्मण्यत्रा, यज्ञ के रूप में कर्म करो, क्योंकि कार्य तो करना ही है, कार्य करना रुक नहीं सकता, तो फिर भगवान की संतुष्टि के लिए हमें करना चाहिए। सो जैसे एक राज्य में नियम होते हैं, तो उन नियमों को अगर आप बड़ी कड़ाई से पालन करते हो या उसके अधीन रहकर करते हो तो आप स्वतंत्र हो। जैसे हम सब स्वतंत्र भारत में जन्म लिए हैं, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि मैं जो चाहे कर सकता हूं, सड़क पर जाकर किसी को थप्पड़ मारूंगा, किसी की हत्या कर दूंगा, कहूंगा मैं स्वतंत्र हूं। नहीं, स्वतंत्रता आपकी तब तक है जब तक आप नियमों का पालन कर रहे हैं। तो इसी तरह जब तक हम वैदिक नियमों का पालन कर रहे हैं, हम जीवन में स्वतंत्र हैं, नहीं तो फिर हमें कड़ाई से दंड भोगना होगा। तो इस चीज को हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ये कहने के बाद अब भगवान कहते हैं कि एक अच्छा उदाहरण बनना चाहिए तुम्हें अर्जुन। तो तुम ये जान लो, तुमने जान लिया कि काम कैसे करना है भगवान की संतुष्टि के लिए यज्ञ के रूप में, तो इसका एक अच्छा उदाहरण बनो लोगों के सामने। अर्थात हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिसके द्वारा हम लोग एक अच्छा सुंदर उदाहरण बन सकें। हमने आपसे प्रारंभ में कहा था जीवन को एक उदाहरण बनाइए। तो कैसे हो सकते हैं अच्छा उदाहरण? सबसे पहली चीज है कि हमें ज्ञान होना चाहिए। दूसरी चीज है ज्ञान के द्वारा हमें स्थिर हो जाना चाहिए, हर समय विचलित नहीं होना चाहिए। हम अपनी पहचान में स्थिर रहें कि हम कौन हैं, कोई चीज को हमें बताने की आवश्यकता ना हो। और जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है उसके कुछ गुणों को प्राप्त करें। तो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति क्या होता है? वो बहुत ज्यादा चिंता नहीं करता, अपने लिए केवल इकट्ठा करने की चिंता नहीं करता, वो दूसरों की चिंता करता है, वो दूसरों के लिए कार्य करता है, उसका जीवन दूसरों के लिए है। क्यों? क्योंकि उसने सोच लिया है कि मैंने कई जन्मों में केवल अपने लिए मैं जी चुका हूं, एक जन्म केवल अब मैं भगवान को देना चाहता हूं। कितना सुंदर उदाहरण है हम सबके लिए पालन करने के लिए, कि हम सब ने कई कई जीवन बहुत सारे लोगों को दे दिया, अपने लिए दे दिया, अब भगवान को एक जीवन हमें प्रदान करना है। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इसको हमें एक अच्छा उदाहरण निश्चित बनना चाहिए। और विशेष करके अगर आप समाज में एक लीडर बनना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि आप सब बने, आप सबको लीडर बनना चाहिए, नेता बनना चाहिए, लीड करना चाहिए। जैसे हमने बताया कि कुछ कीजिए जीवन में, लोग आपको देखकर आपसे सीखें, दूसरों के लिए उदाहरण बने। तो भगवान कहते हैं जनक आदयः, जनक जैसे राजा से सीखो। क्या किया जनक ने? जनक अपने कर्तव्यों को कर रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, राज्य नहीं छोड़ा, संन्यास नहीं लिया, वो अपने कर्तव्यों को कर रहे हैं। कौन से कर्तव्यों को? लेकिन उन्हें पता था शास्त्र के आधार पर कि आत्मा के क्या कर्तव्य है, इसीलिए जनक महाराज उन कर्तव्यों को करते थे। कर्तव्य मानकर और सही मार्ग निर्देशन में, और इसीलिए वो भगवान के द्वारा गुणगान किए गया उनका। तो ऐसे कार्य हमें करने चाहिए, एक अच्छा उदाहरण बने। सो जरूरी नहीं है कि हम वैरागी हों, सन्यासी हों, जहां भी हैं, आप पारिवारिक जीवन में हैं कोई बात नहीं, एक अच्छे पारिवारिक जीवन में रहते हुए सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। और अगर वो नहीं कर पाएंगे तो फिर अच्छा है कि आप, जैसे लोग संन्यास लेते हैं तो संन्यास लेकर क्या करते हैं, फिर अगर आसक्त हैं चीजों से, उनसे अच्छा है कि व्यक्ति घर पर रहे लेकिन अनासक्त हो, डिटैच रहना। यानी कहने का सार ये, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आपको आत्म साक्षात्कार के लिए घर छोड़ना होगा, आपको आत्म साक्षात्कार के लिए सब कुछ त्यागना होगा, नहीं, अब जहां है वहीं रहें, केवल ये भावना को त्याग दीजिए कि मैं कर रहा हूं, ये जान लीजिए कि सब कुछ कृष्ण कर रहे हैं। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा आसक्त है, वो सुनना नहीं चाहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उसने ज्ञान ले लिया, अब दूसरों को समझाना है क्या करे, तो भगवान कहते हैं ज्यादा उसको डिस्टर्ब मत करो, जो कर रहे हैं करने दो, लेकिन उनको किसी न किसी तरह कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करो, और वो भक्ति योग होगा। और ये जान लीजिए कि भक्ति योग या भगवान की भक्ति करना, ये पर्पस है भगवद गीता का। भगवान ने भगवद गीता इसलिए नहीं बोली कि अर्जुन युद्ध करे, तो भगवान वैसे भी उससे करा सकते थे, और नहीं भी होता भगवान अकेले ही सबको मार चुके थे। तो भगवान ने भगवद गीता इसलिए नहीं कही कि युद्ध हो, भगवान ने भगवद गीता इसलिए भी नहीं कही कि कुछ अर्जुन का गुणगान हो, कृष्ण कितने ज्ञानी हैं लोगों को पता चले, वो तो पहले से पता लोगों। तो कृष्ण ने भगवद गीता इसलिए कही ताकि भक्ति लोग कर सकें। और भक्ति कैसे की जाती है? सबसे पहले आलस त्यागना। भक्ति आलसियों का काम नहीं है। कभी कभी लोग आरोप लगाते हैं कि भक्ति करना मतलब आप सब कुछ छोड़कर जाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं, भक्ति आलसियों के लिए है ही नहीं, भगवान कहते हैं। तो फिर कैसे करना है भक्ति को? इस जगत के किसी लाभ की कामना के बिना हमें भक्ति को करना चाहिए, कि कोई इच्छा नहीं है इस जगत के कुछ लाभ को प्राप्त करने की। तो कब होगा? भगवान कहते जब मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान को लोगे और अपने सारे कार्यों को मुझको समर्पित करोगे, तब जाकर इस भावना में आओगे कि मुझे इस जगत में कुछ लेना नहीं, केवल देना है। लेना तो सब लोग करते हैं, लेकिन हमें देना सीखना चाहिए। तो भगवान के अनुसार अगर हम ऐसे बंधन से दूर जाना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? दो चीजें। श्रद्धा होना, शुरुआत में हमने बात की थी, श्रद्धा जरूरी है। और दूसरा, द्वेष नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं इस जगत में रहते रहते हमें द्वेष हो जाता है, उसके पास कितना ज्यादा है, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो द्वेष हो जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम कृष्ण भावना भावित नहीं है, हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम भगवान के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, और भगवान के आदेश का पालन ना करने से ज्ञान नहीं मिलता, और ज्ञान नहीं मिलने से हम द्वेषी हो जाते हैं, और ये द्वेष हमें जीने नहीं देता। बारंबार हमारे मन में ये द्वेष बहुत बुरा है। कभी कभी तो द्वेष के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। आपको उदाहरण देते हैं कि जब द्वेष हो जाता है व्यक्ति को, अमेरिका में एक बड़ा अमीर व्यक्ति थे, तो उसको अपनी पत्नी से ही द्वेष हो गया। सो दोनों कोर्ट में गए, हमें नहीं रहना है। तो पत्नी ने कहा ठीक है, नहीं रहना कोई बात नहीं, मुझे तो प्रॉपर्टी का आधा चाहिए। वो बड़ा, तो उसने क्या किया, बहुत पेपर्स वेपर सब घुमा के, उसको द्वेष था कि पत्नी को कुछ नहीं देना, तो उसने कोर्ट में प्रूव कर दिया कि उसके पास कुछ है ही नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा घर था, तो उसको प्रूव नहीं कर पाया। तो फाइनली कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है, ये घर आपका है, आप इसको बेचिए और आधा पत्नी को दीजिए और आधा आप लीजिए। तो अब इस व्यक्ति को इतना द्वेष था, तो उसने पत्नी को कुछ देना नहीं है, तो उसने क्या किया, वो जो घर था वो समझ लीजिए 50 करोड़ का था, तो कोर्ट ने कहा बेचो 25 करोड़ उसको, तो जो जितने में भी बिके आधा आधा दे दो। तो उस व्यक्ति ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि इतना बड़ा घर जो 50 करोड़ का था उसने 50,000 में बेच दी, द्वेष। अब कोर्ट ने क्या कहा था, जितने में बिके आधा देना, तो पत्नी को 25,000 दिया, खुद 25,000 दिया, ले हो गया। अब ये मूर्ख व्यक्ति देख नहीं पाया कि द्वेष के कारण जो 25 करोड़ उसको मिलना था उसकी जगह 25,000 ही मिला, लेकिन पत्नी को नहीं देना, इसे द्वेष कहते हैं। या और एक उदाहरण आपको द्वेष का देते हैं कि दो शिव जी के भक्त आसपास रह रहे थे, तो दोनों तपस्या करने लगे, शिव जी को प्रसन्न करेंगे। शिव जी प्रसन्न हुए, शिव जी आए, उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, तपस्या इतनी कर रहे हो, क्या चाहते हो? तो पहले व्यक्ति के पास आए तो उसने पूछा वो आप पड़ोसी के पास गए कि नहीं गए? शिव जी का नहीं, पहले तुम्हारे पास आया। तो अब वो बात दुखी हो गया कि क्या मांगू, क्योंकि अगर मैंने कुछ मांगा और मेरे पड़ोसी ने अधिक मांग लिया तो फिर और नुकसान हो जाएगा, इसे द्वेष कहते हैं। तो उसने शिव जी से कहा अच्छा एक काम कीजिए, आप उसके पास जाइए और जो भी वो आपसे मांगे उसका दुगना मुझे दे दीजिए, बस खत्म हो गई बात। तो वो एक बिल्डिंग मांगेगा मुझे 2 मिल जाएंगी, वो 100 करोड़ मांगेगा मुझे 200 करोड़ मिल जाएगा, वो 10 कार मांगेगा मुझे 20 मिल जाएंगे, बस इतना कर लीजिए। शिव जी ने कहा ठीक है, तथास्तु। उसके पास गए दूसरे का, अच्छा दोनों एक दूसरे से बड़ा द्वेष करते थे, तो दूसरे के पास गए, उसको पूछा भाई क्या चाहिए तुम्हें, बताओ क्या मांगते हो? तो उसने भी यही पूछा आप उसके पास गए थे? बोले हाँ। उसने क्या मांगा? तो शिव जी ने कहा, उसने कहा कि जो भी तुम्हें देंगे उसका डबल उसको मिलेगा। अब तो इसने सर खुजाना शुरू कर दिया कि ओ बाप रे, मैं अगर ये मांगूंगा उसको डबल मिल जाएगा, ये तो दुखी रहूंगा मैं हमेशा। फिर उसने अपनी बड़ी बुद्धि लगाई और उसने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, अब आप आए हैं तो मेरे लिए एक काम कीजिए, आप मेरी एक आंख फोड़ दीजिए, मेरा एक हाथ तोड़ दीजिए और मेरा एक पैर तोड़ दीजिए। क्यों? इतना द्वेषी था कि उसको लगा कि अगर मेरी एक आंख फूटेगी उसकी दोनों फूटेंगी, मेरा एक हाथ टूटेगा उसका दोनों टूटेगा, मेरा एक पांव टूटेगा उसका दोनों। अब शिव जी ने कर दिया, अब ये लंगड़ाता हुआ, एक आंख चली गई एक हाथ चला गया, लंगड़ाता हुआ पांव नहीं है, और वो जा रहा है वहां पर देखने के लिए कि उसके दोनों पांव टूटे कि नहीं, इसे कहते हैं द्वेष। तो इसीलिए जब तक हम भगवान के आदेश का पालन नहीं करते हैं, ज्ञान नहीं लेते हैं, हमारे अंदर केवल द्वेष बढ़ता रहता है और उसके कारण भौतिक इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए और ज्ञान के आधार पर हमारा जीवन होना चाहिए। नहीं तो ये जान लीजिए कि अगर आप बहुत बड़े हाईवे पर भी जा रहे हैं, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ एक्सीडेंट इवन ऑन रॉयल रोड, राजमार्ग पर भी एक्सीडेंट हो सकता है। और राजमार्ग क्या है? वो मार्ग जहां हम भगवान की ओर बड़ी तीव्रता से जा रहे हैं, अपनी सफलता की ओर जा रहे हैं, और उसमें बाधाएं आ जाती हैं। क्या बाधाएं हैं? किसी से आसक्ति राग और किसी से द्वेष, ये बहुत बड़ी बाधाएं हैं आत्म साक्षात्कार के पथ पर। सो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इस तरह से इस द्वेष को त्याग सकें, वो बहुत अच्छा। और द्वेष को कब त्याग सकेंगे? जब हम अपने कर्तव्यों को सही दृष्टि से करेंगे। दो तरह के कर्तव्य होते हैं हमारे, एक भौतिक कर्तव्य ड्यूटीज और दूसरा आध्यात्मिक कर्तव्य। जैसे इस जगत में लोग कहते हैं माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमारा कर्तव्य है माता पिता के प्रति, बिल्कुल है। शास्त्र कहता है कि माता पिता के प्रति कर्तव्य को त्यागोगे तो नरक जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई एक प्रश्न ये भी आता है कि अगर आपके माता पिता के प्रति कर्तव्य है तो क्या परमपिता भगवान के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? उस कर्तव्य को क्यों भूल रहे? तो इसीलिए यस, एक हमारा बहुत इस स्तर पर माता पिता के प्रति निश्चित कर्तव्य है, उसको त्यागना नहीं चाहिए। लेकिन भगवान के प्रति कर्तव्य को क्यों त्याग रहे हैं? ये हमारे मनुष्य जीवन में, हमारे जीवन में ये बहुत बड़ी, ये हमारा एडवांसमेंट, ये हमारा मॉडर्नाइजेशन है कि हम उन कर्तव्यों को तो ले रहे हैं जो हमें अच्छा लग रहा है। हाँ, वैसे आजकल लोग अपने माँ बाप के प्रति भी कर्तव्य को नहीं करते, लेकिन फिर भी उन कर्तव्यों को तो कर रहे हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक कर्तव्य परम पिता भगवान के प्रति कर्तव्य है उसको भूल जा रहे हैं हम। कैसी प्रगति है हमारी? दोनों ही कर्तव्यों में, और ये क्यों होता है, क्योंकि दोनों कर्तव्यों में एक जो महत्वपूर्ण चीज है कि लोगों किसी के मार्ग निर्देशन में चलना, वो हम भूल रहे हैं, वो हम छोड़ रहे हैं, और इसीलिए तकलीफें होती हैं। सो हमारे आध्यात्मिक क्रियाओं को भी हमें किसी के मार्ग निर्देशन में लेना चाहिए, किसी को देख कर नकल नहीं कर लेनी चाहिए। भगवान इस बात को कह रहे हैं इस अध्याय में कि देखो दूसरों की नकल मत करो अर्जुन। क्यों दूसरों की नकल ना करो? समाज में दुर्व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हें लगता वो कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तो जीवन में कभी भी इमिटेट मत कीजिए, नकल मत कीजिए। हाँ, किसी व्यक्ति के अच्छे गुणों को सीख कर उसको जीवन में अपनाइए, ये ठीक है, लेकिन इमिटेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें, नकल नहीं करनी चाहिए हमें। सो इस तरह से भगवान इसमें कहते हैं। और फिर अब भगवान अंतिम विभाग में आ रहे हैं भगवद गीता के इस तीसरे अध्याय के। हम थोड़ा सा प्रयास हमने किया थोड़ा जल्दी इसको समाप्त करने का, लेकिन 8 बजे तक हो नहीं पाया। 5-10 मिनट और आपसे लेंगे केवल, ताकि इसको पूरा कर सकें। सो अब भगवान आखिरी विभाग है, 36 से 43 श्लोक तक भगवान चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी दे रहे हैं? अपने सही शत्रु को पहचानो, और वो क्या है? काम वासना। भगवान कह रहे हैं कि ये सही शत्रु है। कैसे है शत्रु? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्यनम इह वैरिणम। यही एक शत्रु है तुम्हारा। क्योंकि अर्जुन ने एक प्रश्न किया, जब अर्जुन ने ये सब सुना कि भगवान कह रहे हैं कि अच्छा काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो अर्जुन ने कहा लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है, वो अच्छा काम करना चाहते हैं, गलत काम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कोई अंदर से ऐसी उनकी शक्ति है अंदर के कि वो उनको जबरदस्ती गलत काम करा लेती है। और हम ये जानते हैं, आप सब भी इस अनुभव होगा आप सबको, कि कई बार ऐसा हुआ कि आप कुछ नहीं करना चाहते, आपको पता ये गलत है, मगर पता नहीं आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और हो जाता है। तो अर्जुन ने पूछा ये कैसे होता है भाई, व्यक्ति अगर कंट्रोल कर रहा है, जान रहा है, तो नहीं होना चाहिए। तो भगवान उसको कहते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यनम यह वैरिणम। कि हे अर्जुन, ये क्योंकि जो काम वासना है वो बड़ी तीव्र हो जाती है। तो फिर अर्जुन के मन में आया, लेकिन हम सब तो आपके ही अंश हैं, हम सब तो आपसे आए हैं, फिर हम क्यों पाप करते हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं वो जो तुम्हारा मूल स्वभाव है तुम भूल चुके हो। इस समय जो स्वभाव है पाप करने का, वो दरअसल हमारा नहीं है। तो फिर पाप क्यों, अगर हम हमारा मूल स्वभाव नहीं है तो हम पाप क्यों करते हैं? कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ तो भगवान की सानुमति से होता है, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर क्या पाप भी भगवान कराते हमसे? तो उसको भगवान बहुत स्पष्ट कर रहे हैं, नहीं, ये काम वासना है जो आपको पाप करने पर मजबूर करती है, जो शुद्ध जीव के चेतना को ढक देती है और हमें पाप करवा देती है। और क्या करती है ये? हमारे अंदर जो वासना है वो धीरे धीरे क्रोध के रूप में प्रकट होती है। तो इसलिए हमें इसको बदलने का प्रयास करना चाहिए। सो जीवन में काम वासना को प्रेम में बदलने का अभ्यास कीजिए। तो जो जीव है, हम सब जो हैं, आत्मा हैं, सो हम जब इस जगत में फंस जाते हैं यहाँ पर आकर, तो सीधे काम वासना हमारे हृदय में आ जाती है। उदाहरण दिए कि जैसे दूध होता है, दूध में कोई खट्टा चीज डाल दीजिए तो फिर वो दही बन जाता है। तो ऐसे ही शुद्ध हैं, कुछ थोड़ा सा आ गया उसमें विकार और हमारे हृदय में। तो जो हमारा प्रेम कृष्ण के लिए होना चाहिए, आज वो काम के रूप में हमारे हृदय में है और उसने हमारे को ढक लिया है, और उसी के आधार पर हमारे शरीर मिलते हैं। जब किसी के ज्ञान को पूरा ढक लेता है काम, तो मान लीजिए कि जैसे भगवान उदाहरण देते, 3 उदाहरण भगवान ने दिए कि कैसे ढका होता है। तो एक उदाहरण दिया कि माँ के गर्भ में बच्चा होता है, ढका होता है। दूसरा उदाहरण दिया दर्पण होता है, उस पर धूल होती है, ढका होता है। तीसरा उदाहरण दिया अग्नि है, धुएं से ढकी होती है। तो ये 3 उदाहरण कैसे हैं? ये 3 उदाहरण हैं कि जैसे किसी की चेतना बहुत ज्यादा ढकी होती है, पेड़ इत्यादि उनको कुछ भी पता नहीं चलता, दूसरा पक्षी इत्यादि, और तीसरे जहां से कृष्ण को प्रेम करने की इच्छा या प्रेम करने का मार्ग शुरू होता है वो है हमारा जीवन, मनुष्यों का जीवन, मानव जीवन, जहां से हम प्रारंभ करते हैं कृष्ण को प्रेम करना। इसीलिए मानव जीवन ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है जहां हम ध्यान से कृष्ण भावनामृत की अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं, दिया जला सकते हो कृष्ण भावनामृत का, क्योंकि इसी जीवन में हम काम को परास्त कर सकते हैं। किस तरह? कृष्ण भावनामृत को उत्पन्न करके। अगर हम सही मार्ग निर्देशन में भक्ति के पालन करते हैं तो हम इस शत्रु को जीत सकते हैं। कहां कहां बैठा है ये शत्रु? हमारी इंद्रियों पर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर। तो इसीलिए उन सब को आध्यात्मिक करना है। जैसे हमारा क्रोध आ जाता है तो क्रोध कैसे आता है, हम अपने मन को वश में नहीं कर पाते, क्रोध में आ जाते हैं, लेकिन उस क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगाया जाता है, जैसे हनुमान जी ने लगाया, सारी लंका जला दी हनुमान जी ने, अर्जुन ने लगाया महाभारत के युद्ध में। हनुमान जी जब गए थे लंका में तो उस समय उनकी पूंछ में आग लगा दी रावण ने, ये इतना ऐसे बोलता है, तो हनुमान जी ने पूरी लंका को ही जला दिया। दरअसल वो गए थे केवल सीता देवी को ढूंढने, लेकिन उन्होंने सोचा चलो रामचंद्र जी की थोड़ी और सेवा कर देते हैं, रावण को एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं, छोटा सा ट्रेलर दिखा देते हैं क्या होने वाला है, कि अगर अभी हनुमान ने आकर इतना कर दिया, रामचंद्र जी आएंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसलिए हनुमान जी ने किया, लेकिन अपने क्रोध को उन्होंने इस्तेमाल किया। तो जैसे हम बता रहे थे मन है, हमारी इंद्रियां हैं, तो हम कैसे कृष्ण में उसको लगा सकते हैं? बड़ा सरल है। जब हमारा मन है नियंत्रण नहीं है तो फिर इंद्रियों के द्वारा वो खींच लिया जाता है, और फिर बुद्धि के द्वारा मन को खींचा जाता है, और फिर बुद्धि कहाँ जाती है? भोग करने में लग जाती है। इसीलिए हमें मन को भगवान के कार्यों में लगाना है, उससे बुद्धि मजबूत हो जाएगी बहुत, और बुद्धि मजबूत हो जाएगी तो फिर अपने आप सही सच्ची सफलता की ओर जा सकेगी। सो इसीलिए इस अध्याय का सार भगवान ने प्रस्तुत किया है। इस अध्याय में क्या कहा है? भगवान ने कहा है कि हमें ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान के आधार पर हमें वासनाओं को नियंत्रण करना चाहिए जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और उसके वो कब होगा? जब हम इंद्रिय को अपने वश में करेंगे, और इंद्रिय को वश में कर हम अपने जीवन को सफल या सफलता के मार्ग पर चलाएंगे, क्योंकि जब तक उसमें लगे हैं अच्छा कुछ सोच ही नहीं पाते। तो ये कर्म कैसे करना है ये पूरे अध्याय में भगवान ने सिखलाया है कि कर्म करो ज्ञान के आधार पर, और वो ज्ञान लो किसी ऐसे व्यक्ति से जो भगवद गीता को जानते हैं, और उस आधार पर अपने जीवन को बदलने का प्रयास करो, शत्रुओं से बचो, निश्चित रूप से सफलता आपको प्राप्त होगी। तो ये भगवान इसमें कह रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और अभी आपको क्विज का लिंक शेयर किया गया है, जो आपके केवल क्विज के लिए नहीं, आपके अटेंडेंस के लिए भी है, ये उन लोगों के लिए है जो सर्टिफिकेट्स प्राप्त करेंगे। तो आप सब कृपया अभी एक 5 मिनट उसको लिंक को भरने का ज़रूर प्रयास करें, क्योंकि उसके बिना सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा, तो आप सब कृपया उसको भर दीजिए। मीनवाइल आप में से किसी के 1-2 प्रश्न हैं तो उनको हम ले सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ प्रश्न है। सचिन यादव, क्या प्रश्न है आपके?
हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था, जब कृष्ण जी एक स्वयं भगवान है, अगर वो चाहते तो महाभारत को हिंसा की बातों से लेकर नहीं, उसको अहिंसा के अहिंसा के रास्ते अपनाकर उसे उसको सोल्यूशन निकाल सकता था महाभारत को, पर फिर भी उसने क्यों हिंसा ही को चूज किया और अर्जुन से करवाया?
बहुत गलत किया ना, प्रेम से कर लेते सब, ये इतने लोगों को मरवा दिया, थोड़ा सा प्रेम से होना था, किसी को जाके दो तीन को गले लगाते अर्जुन दुर्योधन को कि चलो छोड़ो ये सब, चलो आओ बैठ कर हलवा पूड़ी खाते हैं साथ में, लेकिन ऐसा किया नहीं भगवान ने। सो ये क्यों ऐसा हुआ, बहुत अच्छा प्रश्न है, थैंक यू सचिन। जो भगवान चाहते तो कर सकते थे लेकिन किया नहीं। कभी कभी भगवान ये दिखलाना चाह रहे थे कि धर्म की स्थापना के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, कभी कभी हिंसा भी जरूरी होती है। हर बार हम हर चीज प्रेम से नहीं हो सकती। भगवान तो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन भगवान किस लिए आए थे यहाँ, सारी चीजों को हमें समझाने के लिए। तो उनमें से एक चीज ये भी समझाना चाहते थे कि अगर धर्म की स्थापना के लिए व्यक्ति को हिंसा करनी पड़े तो उसको पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य क्या है, ऊंचा उद्देश्य धर्म की स्थापना। जैसे अर्जुन पीछे हट रहा था तो हो सकता उस समय के लिए तो भगवान करते, लेकिन आगे के लिए गलत उदाहरण हो जाता तो लोगों को ये कहा जाता कुछ भी हो जाए बस धर्म के नाम पर चुपचाप सब सहन करते रहो, कोई विरोध मत करो। नहीं, ऐसा बात नहीं है। भगवान ने कहीं ऐसे, जितने भी इतिहास में दो बड़े बड़े युद्ध लड़े गए, एक महाभारत का, दूसरा रामचंद्र जी ने लड़ा, और दोनों में भक्त थे, हनुमान जी एक में और अर्जुन दूसरे में। तो इसीलिए भगवान ये नहीं बताना चाहता, हालांकि रामचंद्र जी ने कभी किसी का साथ गलत नहीं किया, लेकिन जब जरूरत पड़ी रावण को मारा। तो भगवान सब चीजों को, जैसे कि शांति से नहीं कर सकते थे, भगवान ने वो भी किया। भगवान गए शांति दूत बनकर और दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, तो फिर मन में प्रश्न आता, रहे वो तो भगवान है, दुर्योधन को बोलते मत, दुर्योधन मान जाता। नहीं, भगवान सारी चीजों को प्रस्तुत कर रहे थे कि व्यक्ति को सब प्रयास करने चाहिए, पहले बिना युद्ध किए बिना हिंसा किए सारे अभ्यास सारे प्रयास करने चाहिए, लेकिन जब सारे प्रयास विफल हो जाए और धर्म की ना हानि हो रही हो तो फिर हिंसा भी आवश्यक है। तो इसलिए उन्होंने हिंसा को किया। थैंक यू सचिन, वेरी नाइस। अनंत, आपका कुछ प्रश्न है?
हरे कृष्ण। जब रामायण का एंड हुआ था तब सीता जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि तुमको धरती में समाना पड़ा?
सीता जी के साथ क्या हुआ?
सीता जी के साथ ऐसा क्यों हुआ कि उनको धरती में समाना पड़ा था?
धरती में समाना, हाँ लगता है कि बहुत गलत हुआ। दरअसल कुछ गलत नहीं था, क्योंकि जब लीलाएं समाप्त हो गईं, जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य हो गया, तो अब किसी ना किसी कारण से वापस जाना है। जैसे श्री रामचंद्र जी को भी जाना था, लक्ष्मण को भी जाना था, तो लेकिन अब वो कोई तो कारण होना चाहिए। ऐसे तो नहीं कह सकते कि बस हमारी इच्छा खत्म हो गई हम जा रहे हैं, तो कुछ इस जगत में दिखाने के लिए उसको किया गया, और सीता देवी का समर्पण दिखाने के लिए उसको किया गया। क्योंकि उसके पहले सीता देवी कहती हैं, यथा हम राघवादन्यं मनसापीन चिंतये तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमर्हति कर्मणा मनसा वाचा यथा रामं समर्चये तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमर्हति। उन्होंने कहा कि अगर मैंने अपने कर्म से, अपने मन से, अपनी वाचा से केवल श्री रामचंद्र जी की पूजा की है और किसी अन्य पुरुष को, यथा हम राघवाद अन्यम मनसापी, मन में भी किसी अन्य पुरुष का चिंतन नहीं किया, तो हे पृथ्वी देवी मुझे स्थान दीजिए। तो दरअसल वो जो इंसिडेंट है, लोग गलत समझते हैं कि सीता के साथ गलत हुआ, वो इंसिडेंट सीता के महत्व को बढ़ाने के लिए है कि सबके सामने सीता ने कहा कि अगर मैंने कभी ऐसा नहीं किया, न कर्मणा मनसा वाचा यथा रामम समर्चये, तो सीता के गुणगान के लिए भगवान ने ये व्यवस्था की थी, न कि सीता के किसी सीता का अपमान इत्यादि करने के। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रश्न। रियल मी C2, यस।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण,
आवाज आ रही है प्रभु जी?
हाँ जी आ रही है, बोलिए। पहले आप अपना नाम बताइए, क्योंकि आपका तो रियल मी C2 दिखाई दे रहा
नहीं प्रभु जी, उसमें नाम चेंजिंग हुई, थोड़ा सा लेट हो गए थे, इसलिए हमारा नाम उपेंद्र शर्मा है, मैं यूपी प्रतापगढ़ से हूँ।
ओके, बोलिए।
यस प्रभु जी, हमारा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग वैसे भी हम लोग स्टूडेंट लाइफ है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग जब पढ़ते हैं या फिर कोई भी जैसे भगवद गीता पढ़े या फिर अदर कोई सब्जेक्ट पढ़े, तो उसमें एक क्योंकि हर चीज जब इच्छा होती है तो उसमें हम लोग अच्छे से इन्वॉल्व हो पाते हैं, तो हम लोग उसमें मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसमें विल पावर को कैसे इम्प्रूव करें ताकि हमारा मन उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर लग सके, ताकि हम अपनी पढ़ाई को और लंबे टाइम तक कर सके।
ओके, सो हमारा मन नहीं लगता है, पढ़ाई को लंबे समय तक कर नहीं पाते हैं, या जो भी पढ़ते हैं चाहे भगवद गीता या कुछ, तो कैसे लंबे समय तक पढ़ सके, राइट? यही है ना,
बना जाए उस पॉइंट को।
हाँ जी, थैंक यू। सो यस, हमारे लिए ये होता है, हम बहुत लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या कोई भी चाहे भगवद गीता पढ़ें या स्कूल की पढ़ाई कॉलेज की पढ़ाई हो, तो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, कैसे लंबे समय तक हम पढ़ सकते हैं? पहली चीज है कि ये जानना चाहिए कि जब हम प्रयास करते बहुत लंबे समय तक पढ़ने का, वो ठीक नहीं होता, मन का अभ्यास नहीं है। तो इसीलिए हम 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा पढ़ना चाहते, कंटिन्यूस पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मन स्वीकार नहीं करता या फिर चीजें अंदर नहीं जाती। तो इसलिए पहला प्रारंभ करना चाहिए ब्रेक कर करके, थोड़ा सा पढ़ें, फिर एक जरा सा ब्रेक ले लें, फिर पढ़ें, फिर ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद पढ़े, तो मन फ्रेश रहेगा, तो पढ़ने में आनंद आएगा। तो वही चीज जो आप 5 घंटा पढ़ना चाहते हो कंटिन्यूस, वो ब्रेक कर करके आप आराम से 8 घंटा भी पढ़ सकते हो। लेकिन जब आप वो नहीं करते हो कंटिन्यूस पढ़ना, तो सबसे पहली चीज कंटिन्यूस नहीं पढ़ना चाहिए। सो यहाँ पर बिफोर हम इसका आंसर दें, आप में से कई लोग सुबह के मॉर्निंग के मेडिटेशन सेशन में आते हैं, और जो लोग नहीं आते हैं उनके लिए एक लिंक यहाँ पर दिया है, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं सुबह के मेडिटेशन सेशन को, 6:30 बजे हर रोज हम लोग कर रहे हैं, आप में से कई स्टूडेंट्स आते हैं और बहुत अच्छा ये सेशन हो रहा है। ओके, सो हम ये बता रहे थे कि बहुत लंबा ना करें, उसको ब्रेक करें, और ब्रेक कर करके फिर आप धीरे धीरे अभ्यास करें, तो काफी लंबे समय तक आप उसको कर सकते हैं, ठीक है? सो उसको करिए, थैंक यू रियल मी। ओके, थोड़े से यहाँ काफी प्रश्न हैं, हम 1-2 लोगों को केवल चुन रहे हैं जनरली जिनके प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन आप सबके उत्तर देंगे, आप सब बने रहिएगा पहले और आगे, बस आगे पीछे कर रहे हैं कि हो सके कि अगर समय ना मिले अंत में, तो कुछ ऐसे लोग जो पहले कभी नहीं पूछे हैं प्रश्न, तो उनको कर रहे हैं, और उसके बाद दोनों एक ऊपर एक नीचे से ले रहे हैं, एक सबसे नीचे जिनका नाम हो और एक जो सबसे ऊपर। गौरांगी अग्रवाल।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा
प्रभु जी, मेरा नाम गौरांगी अग्रवाल है। मेरे को ये पूछना था कि जब मैं बहुत ट्राई कर रहे हैं।
गौरांगी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्लियर सुनाई नहीं दे रहा।
अभी भी ब्रेक हो रहा है?
अब थोड़ा सा सुन रहे हैं, बताइए।
प्रभु जी, मैं ये कह रही थी जब अपनी लाइफ में, अब आवाज क्लियर आ रहा है?
हाँ, प्रयास करते हैं सुनने का, बताइए।
प्रभु जी, आप एक काम कीजिएगा, मैं ईयरफोन लगा लेती हूँ, आप तब तक किसी और का ले लीजिए, इसके बाद मेरा ले लीजिए।
ठीक है, ओके, थैंक यू। नम्रता, आपका क्या प्रश्न है?
प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या अंतर होता है, कैसे हमें पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं, मतलब हम जिस चीज को भी लेके, वो कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है?
कॉन्फिडेंस मतलब होता है आई कैन डू इट, ओवर कॉन्फिडेंस होता है ओनली आई कैन डू इट, दैट्स ऑल। ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं ही कर सकता हूँ। सो एक ये लाइन है, दूसरा लाइन क्या है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है। कॉन्फिडेंस हमारा किसी फैक्ट्स पर बेस्ड होना चाहिए, कि हम जब सोचते हैं कि हम इसको कर पाएंगे, तो कोई फैक्ट्स उसको बैकअप करने चाहिए, और अगर फैक्ट्स बैकअप नहीं है वो और कॉन्फिडेंस में, अरे ये तो मैं ऐसे ही कर लूंगा, ये तो मैं कर सकता हूँ। सो पहली चीज है कि फैक्ट्स पर बेस नहीं होना। दूसरा चीज कि उसको बड़े कैजुअल लेना। जैसे कॉन्फिडेंस जब होता है ना व्यक्ति का कि मुझे रेस जीतनी है, मैं जीतूंगा इसको, तो वो कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस कैसे होता है, बड़ी गंभीर होता है, सीरियस। लेकिन जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसमें कैजुअल नेचर होता है, अरे ये तो मैं आराम से जीत जाऊँ, कोई चिंता नहीं, इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। कैजुअल ले लेना चीजों को। सो गंभीरता होनी चाहिए, फैक्ट्स बेस्ड होने चाहिए कॉन्फिडेंस। और अगर हम स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से देखें तो हमारा कॉन्फिडेंस हमसे ज्यादा हमें भगवान पर प्लेस करना चाहिए। कि कॉन्फिडेंस कब होता है, जब व्यक्ति सोचता है कि मैं अपना 100% करूंगा, रिजल्ट आना या ना आना भगवान के हाथ में। तो ये हमारे लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। नहीं तो जब तक हम चिंता करते रहते, अरे ये होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, तो कभी हम कैजुअल हो जाते हैं या कभी हम डिप्रेशन में चले जाते कि शायद मुझसे नहीं होगा। इसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है फैक्ट्स बेस्ड हो चीजें, कॉन्फिडेंस, और कैजुअल ना हो, जैसे हम लोग देखते हैं कि वो कैजुअल हो जाता है। और फिर अपना 100% हम दें, लेकिन ये जानते हुए कि इसका जो भी रिजल्ट है वो तो भगवान पे होगा, लेकिन मुझे अपना 100% देना है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। ओके, प्रियांशु यादव। यस प्रियांशु।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा।
प्रभु जी, इसी तीसरे अध्याय में जो अपना 9वां श्लोक है, उसमें हमारे श्री कृष्ण जी ने कहा है कि उनकी प्रसन्नता के लिए हमें अपने नियत कर्म करने हैं जी प्रभु जी, ताकि हम इस बंधन से सदा के लिए मुक्त हो पाए। तो प्रभु जी, हमें इसमें एक चीज समझ में नहीं आया कि हमें कौन से कर्म करने हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण किन कर्मों की बात कर रहे हैं?
नवे श्लोक में जो उन्होंने कहा है वो है यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। हाँ, इसी श्लोक की बात कर रहे हो आप
जी प्रभु जी।
हाँ, सो इसमें भगवान ने कहा है कि जो भी आप कर्म करते हो वो यज्ञ के रूप में करो, नहीं तो बंधन आएगा। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो कहते हैं कि इसीलिए अपने नियत कर्मों को करना चाहिए उनकी संतुष्टि के लिए, जिससे वो हमेशा मुक्त संग मुक्त हो सके। तो यहाँ का प्रश्न है कि नियत कर्म क्या है जो हमें उनकी संतुष्टि के लिए करने चाहिए। नियत कर्म का अर्थ होता है आप जिस स्थिति में हैं, जहां हैं, उस स्थिति के लिए, हर एक स्थिति के लिए कुछ कर्म दिए गए, नियत कर दिए गए, तो उस कर्म को करना। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति टीचर है, तो उसके लिए क्या नियत कर्म है? उसके लिए नियत कर्म किए गए पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, तो उसको पढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, यज्ञ इत्यादि करने चाहिए अगर वो आध्यात्मिक ज्ञान का टीचर है। तो इसके नियत कर्म कुछ दिए गए हैं और शास्त्रों में भी दिए गए अलग अलग स्थिति में। कोई विद्यार्थी है, उनके नियत कर्म क्या है? नियत मतलब उसके लिए जो उस समय करना जरूरी है। तो इसीलिए अलग अलग अवस्था में ये अलग अलग कर्म होते हैं। एक विद्यार्थी के लिए नियत कर्म क्या है? अपने अध्ययन को बहुत अच्छी तरह से करना, अपने शरीर और चेतना को बहुत अच्छा रखना, और पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ते हुए जीवन के उद्देश्य को ना भूलते हुए भगवान की ओर बढ़ना। तो ये नियत कर्म है, तो उसको हमें करने चाहिए। तो हर एक के लिए नियत कर्म दिए गए। ठीक है प्रियांशु
जी प्रभु जी।
थैंक यू प्रियांशु। ओके, सो और एक कितना समय हुआ है? क्षमा चाहते हैं, 8:20 हो गए। एक या दो प्रश्न और ले सकेंगे हम, उसके ज्यादा नहीं। समृद्धि, क्या प्रश्न है आपका?
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण
प्रभु जी। भगवान सब कुछ जानते हैं, वो वर्तमान भूत भविष्य सब जानते हैं, तो क्या हमारा भविष्य पहले से निर्धारित है कि हमारे कर्मों से वो निर्माण भविष्य का निर्माण होता है?
वंडरफुल, बहुत अच्छा प्रश्न है, थैंक यू। सो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि अगर हमारा भविष्य कुछ निर्धारित होता पहले से ही, कुछ हमारे कार्यों से या कुछ बदल नहीं सकता, तो हमें इतना भगवद गीता पढ़ने की जरूरत क्या होती? भगवान इतना आकर ज्ञान क्यों देते? अगर सब कुछ निर्धारित ही है वो तो होने वाला है। आप भगवत गीता पढ़ो ना पढ़ो, आप शराब पियो मांस खाओ जुआ खेलो गलत काम करो, जो निर्धारित है वो होगा। तो फिर ये सब बताने की क्या जरूरत है कि जीवन ऐसे जीना है? तो इसका बताने का अर्थ क्या है? इसका बताने का अर्थ ये है कि हम निश्चित हमारे जीवन में कुछ चीजें फिक्स हैं, लेकिन सब कुछ हमारे जीवन में फिक्स है ये सही नहीं। इस चीज को ध्यान रखिए कि ये गलत चीज फैला दी गई है कि हमारे जीवन में सब कुछ फिक्स है। ये बहुत डेंजरस सिद्धांत है, क्योंकि उसके द्वारा लोग बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, ऐसे ही फिक्स है ना, जो होना होने वाला है, क्या फायदा है भगवान के मंदिर जाकर, क्या होने वाला है, वैसे भी जीवन में जो होना है वो होगा। तो ये सारी चीजें ऐसी डेंजरस फिलॉसफी है। तो इसलिए आप इसको समझिए अच्छी तरह से। पहली चीज, हमारे जीवन में सब कुछ निश्चित नहीं है। दूसरी चीज, हमारे जीवन में स्थितियां निश्चित हैं, लेकिन उन स्थितियों पर हमारा जो रिएक्शन है वो निश्चित नहीं। इसको आप इसका हम आपको एक उदाहरण दे देते हैं कि कैसे होता है। कि मान लीजिए अचानक आपको 10 लाख रुपया मिल जाता है, अचानक आपको मिल गया, तो ये जो है ये आप फिक्स था कि आपको 10 लाख मिलेगा। अब उस 10 लाख का आप क्या करते हो ये फिक्स नहीं है, ये आपके ऊपर है। तो ये आपकी छोटी सी स्वतंत्रता है कि आपको 10 लाख मिला है, आप इसका क्या करते हो। कोई हो सकता है उसको 10 लाख मिला जाकर वो शराब खाने में गया, कहीं और गया, उड़ा दिया पैसा एक दिन में। किसी को मिला उसने सोचा कि चलो किसी गरीब की मदद कर देता हूँ, किसी को मिला उसने सोचा मैं अपने लिए सारा कुछ खरीद लेता हूँ, फिर किसी को मिला उसने सोचा नहीं मंदिर बन रहा है जाके मंदिर में दे देता हूँ, कुछ भी। तो ये जो चारों पांचों स्थितियां हैं ये आपका चुनाव है, ये फिक्स नहीं है, लेकिन 10 लाख मिलना वो फिक्स्ड है। तो अर्थ क्या है, स्थितियां फिक्स हैं लेकिन आपका रिएक्शन उसके ऊपर क्या होगा वो फिक्स नहीं है। तो उस वो किस पर आधारित होता है हमारा रिएक्शन? वो हमारा नॉलेज पर, हमने कौन सा ज्ञान लिया है। अगर हमने भगवद गीता पढ़ी है, शास्त्र पढ़े हैं, तो हमारा जो रिएक्शन होगा, रिस्पॉन्स होगा, वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हमने वो नहीं पढ़ा है, हमने केवल इधर उधर की बातें सुनी हैं, फिल्में देखी हैं और इधर उधर से सुना है जिसमें सब दिखाया जाता है, तो हमारा फिर रिएक्शन वैसा ही होगा। तो इसीलिए ये चीज जो आपने पूछी ये बहुत स्पष्ट है कि यस, हमारे जीवन में सब कुछ निश्चित नहीं है। हाँ, कुछ चीजें निश्चित हैं हमारे जीवन में और वो स्थितियां हैं, लेकिन उसका रिएक्शन हमारे ऊपर है। तो हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि सब कुछ निश्चित है, हम तो कुछ नहीं करेंगे। अपनी जिम्मेदारियों को त्याग नहीं सकते हम, तो हमारी जिम्मेदारी है उसको हमें करना है। कैसे करेंगे हम अपनी जिम्मेदारी को, किस प्रकार से करेंगे? ज्ञान के आधार, मार्गदर्शन के आधार पर। इसीलिए जीवन में हम बारंबार कह रहे हैं, इन दो चीजों को आप जरूर ढूंढिए, जरूर जानिए और जीवन भर उसको पास रखिए। वो है एक सही मार्गदर्शन, है एक ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन जिसका अब उसके पीछे कोई छुपा हुआ उद्देश्य नहीं हो कि मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं इससे मुझे कुछ प्राप्त हो जाए। और दूसरा, शास्त्र का आधार जीवन में, और इन दोनों को लेकर हम अपने जीवन की सफलता की ओर बढ़े। ठीक है, ओके। समय काफी हो रहा है जैसे हम बता रहे थे, फिर भी एक दो प्रश्न निश्चित। शुभजीत, आपका क्या प्रश्न है?
हरे कृष्ण प्रभु जी। रिसेंटली मैं एक जाना कि अष्टावक्र गीता भी एक होता है, एक क्या ये भगवत गीता से अलग है, तो कैसे अलग है?
गीता जिसमें जैसे बहुत सी गीताएं हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में एक भाग आता है जिसे उद्धव गीता कहते हैं, भगवान ने उद्धव को ज्ञान दिया। वैसे ही अष्टवक्र के द्वारा ये लिखा गया गीता है, अष्टवक्र गीता। तो ऐसे कई और गीता के संस्करण माने जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने उसको कहा, जैसे भगवान ने उद्धव को कहा इत्यादि। तो उनमें अंतर क्या होता है, मूल बात वही रहती है। जैसे उद्धव को भी जो उन्होंने गीता दी है उसमें कई चीजें अलग हैं जो अर्जुन को नहीं दी है। जैसे उसमें उन्होंने बताया कि मेरा मंदिर होना चाहिए, मेरे मंदिर के सामने बगीचा होना चाहिए, ये सब भगवान ने कहा है उसमें, तो लेकिन वो अर्जुन को नहीं कहा। सिद्धांत वही है, प्रिंसिपल्स वही है। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। अर्जुन, ये भगवत गीता का ज्ञान मैंने करोड़ों साल पहले विवस्वान को दिया था, तो अब विवस्वान को अगर उन्होंने दिया तो उसमें ये सब तो होगा नहीं कि कौन्तेय पार्थ, ये तो अर्जुन को कह रहे हैं, तो क्या वो तो सिद्धांत वही है, केवल उसको समय के अनुसार भगवान ने अलग अलग दिया। ठीक है शुभ जी, थैंक यू। ओके, एक आखिरी प्रश्न भी लेना चाहेंगे क्योंकि समय बहुत हुआ है, 8:30 होने वाला हमारी और भी एक क्लास होती है रात को। सो आई थिंक गौरांगी आप कुछ पूछना चाहते थे लेकिन आपका नेट नहीं चल रहा था, अगर अभी आवाज आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा,
अब आवाज आ रहा है सही से?
हाँ जी आवाज सही।
मेरे को एक हद तक अभी किसी ने पूछ लिया वो क्वेश्चन कि सब कुछ निश्चित ही है अपनी लाइफ में, तो मुझे ये पूछना था जैसे लोग बोलते हैं हम किसी चीज के लिए ट्राई कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं बट वो हमको नहीं मिल रहा, जैसे हम किसी चीज के लिए ट्राई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एग्जाम है उसको क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं पर हमको नहीं मिल रहा, तो एक बार के बाद लोग आके बोलते हैं या हम खुद मानने लगते हैं कि ये हमारी किस्मत में ही नहीं है, तो फिर हम उससे कैसे डील करें, और क्या हम ये सोच के कि ये तो हमारी किस्मत में नहीं होगा तो हम पीछे हट जाएं, या फिर अपने किस्मत को कैसे चेंज करें अपने डेस्टिनी को?
थैंक यू गौरांगी, बहुत अच्छा सवाल है, गुड। सो ऐसा होता है कि हमने कई बार ट्राई किया, अभी हम मेडिकल में जाना चाहते हैं हमें सीट नहीं मिली या हमारे मार्क बहुत कम आए, फिर या कहीं और जाना चाहते हैं, तो क्या करें, क्या एक साल, फिर क्वेश्चन आता है 1 साल वेट करके अगले साल करें या अभी कर लें, साल बर्बाद नहीं करें? नहीं नहीं, कोई कहते कह रहे नहीं करो अगले बार हो जाओगे तो भी क्या है, हो जाएगा, तो क्या इसका क्या प्रमाण होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या प्रयास करना चाहिए? पहला चीज है हमें अपना प्रयास पूरा करना चाहिए, पूरा फुल जितना भी हमारे अंदर क्षमता है हमें उसका प्रयास करना चाहिए, हमें छोड़ना नहीं चाहिए कि ठीक है एक बार किया नहीं हुआ तो ठीक है। सो इसका बहुत सरल सिद्धांत है कि हम अपने प्रयास को पूरा करें, तो अगर हमें लगता है कि नहीं अगली बार भी कर कर हम हो जाएंगे, प्रयास करें एक बार और, लेकिन फिर उस समय भी ना हो तो फिर छोड़ देना चाहिए, मतलब हमें एक बार दो बार तीन बार अपना प्रयास कर लेना चाहिए, लेकिन जब लगे कि नहीं हो रहा है तब फिर हमें उसको छोड़ देना चाहिए, या फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको किसी एक्सपर्ट से उस समय, या दो तरह के एक्सपर्ट्स होते हैं, एक उस फील्ड के एक्सपर्ट और दूसरे आध्यात्मिक एक्सपर्ट, तो किसी आध्यात्मिक एक्सपर्ट से जरूर पूछ लेना चाहिए। अपना प्रयास कर लिया, अब आप इस पॉइंट पे आ गए कि मैंने दो बार ट्राई कर लिया नहीं हो रहा, अब तीसरी बार करें या ना करें, तो निश्चित गाइडेंस ले लेना चाहिए। मगर सिंपल सिद्धांत ये है कि प्रयास अपना जरूर करें, लेकिन जब बहुत ज्यादा उसमें नहीं कि अब नहीं हो रहा तो हम 10-10 साल तक हम वही देंगे और लगेंगे मेडिकल में, नहीं, फिर जान लेना चाहिए कि जरूर कुछ और हमारे लिए बना है, तो हम उसको प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इस समय 8:30 हुए हैं और हमें इसको समाप्त करना होगा, हालांकि आई कैन सी 1, 2, 3, 4 चार लोगों के और अभी भी प्रश्न है, सो आई एम रियली सॉरी। कल वैसे हम लोगों ने एक इसके लिए सुविधा शुरू की है, कई स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी प्रश्न भेज दिए हैं कि आप अपने प्रश्न भेजें और ग्रुप में हम 5-5 प्रश्नों के उत्तर रिकॉर्ड कर भेज रहे हैं। सो आज से वो प्रारंभ हुआ है या होगा भी, तो आप क्या कीजिए कि आपके जितने भी प्रश्न हैं, क्योंकि ये समय बहुत कम होता है, हो नहीं पाता, तो जो भी क्वेरी है आप ईमेल पर भेज दीजिए iyfgreaternoida@gmail.com, यहाँ पर दिया गया आपको, तो आप उसको निश्चित भेज दीजिए, हम आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, और कल हम लोग 4th अध्याय को करेंगे भगवद गीता के, याद है ना 18 अध्याय 18 सेशन में होने हैं, 3 अध्याय हो चुके हैं, कल 4th अध्याय कर्म के ही सिद्धांत को और आगे बढ़ाएंगे कि दिव्य ज्ञान क्या है, इसको हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रेवती प्राण ग्रुप मेडिटेशन ग्रुप का लिंक एक दो बार और भेज दीजिए, कुछ लोग मांग रहे हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा।